शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, आदि रत्नों के प्यारे ब्राह्मण परिवार के बहनों और भाइयों, ओम शांति। आप भट्टी में आए हुए हैं और बहन जी ने खीर की बात कर दी। खीर है, दूध, चावल और क्या बोला था? इलायची। तो बहन जी की बात सुनकर भंडारे वालों ने आज खीर तैयार कर दी है। अच्छा, लेकिन जब आप खाने जाओ तो मास्क उतार लेना, वरना सिर्फ दूध ही दूध अंदर आएगा। अच्छा, अब आप देखो टॉपिक क्या है आपका। तीव्र पुरुषार्थ लक्षण। अच्छा ठीक, तीव्र पुरुषार्थ का पहला लक्षण तो ये है कि तीव्र पुरुषार्थियों ने ब्रह्मा बाबा को स्वर्ग का गेट खोलने से रोक रखा। अब आप बताओ, क्या ब्रह्मा बाबा को स्वर्ग का गेट खोलने दोगे कि नहीं दोगे? आप चाहते हो खोले या खीर ही खाते रहना है? क्यों? तीव्र पुरुषार्थ, 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 ये तो हम जब से ब्राह्मण जन्म लिया करते ही आए हैं। तो आपके ख्याल में जब तक पुरुषार्थ शब्द साथ रहेगा आपके, तो स्वर्ग का गेट खुलेगा, परम धाम का गेट खुलेगा? नहीं। तो पहला काम क्या करो, पहला काम क्या करो कि आज से और अभी से अपने नाम के साथ पुरुषार्थ शब्द लगाना बंद कर दो। ठीक है, मंजूर है? ये डर गए हैं कि भाई हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने गीत सुना अभी जो बजा था, वो गीत क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? जीवन की नैया, अगली लाइन क्या थी? जैसे वो चाहे। तो आप उसको अलाउ ही नहीं करते कि जैसे वो चाहे उसको पार करे। आप तो बीच में चप्पू लेके बैठे कि जी हम तो प्रसाद करेंगे। तो क्या मंजूर है? पुरुषार्थ हो, तीव्र पुरुषार्थ हो, अति तीव्र पुरुषार्थ हो, दृढ़ पुरुषार्थ हो, तो मेरी राय ये है, आपके भले की बात है, आप मानो ना मानो, कि आप पुरुषार्थ शब्द यूज करना बंद कर दो। क्योंकि अब आपको कश्ती आपकी जो है किनारे पर पहुंच गई है, समय देखो, और खाली आपने उससे एक कदम उतरकर पार उतरना है। तो चप्पू चलाना तो बंद हो जाता है ना जब कश्ती किनारे पे पहुंचती है। तो क्या करो फिर? अब आपका टॉपिक है तीव्र पुरुषार्थ की विधि नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ के क्या है लक्षण है। अब तीव्र पुरुषार्थी के लक्षणों पर आओ। पुरुषार्थ बंद, लक्षण शुरू। तो हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य या लक्षण क्या है? आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसका लक्ष्य क्या है? नर से, नारी से, ये भी गलत है। आप नर से लक्ष्मी भी बन सकते हैं, नारी से नारायण भी बन सकते हैं, है ना? इसलिए अब आप सोचो कि हमें जो लक्ष्मी नारायण के गुण है वो जीवन में चेक करने हैं। यही हमारा पुरुषार्थ। उनके गुण क्या है, पहला पहला क्या है, आपकी जो डिग्री है उसका पहला शब्द क्या है, हैं? सुनाई नहीं दिया, पूरा मंत्र पढ़ दिया। हाँ, शाबाश। पहला पहला नंबर वार होता है, कोई बीए पहले लिख दे एमए बाद में लिख दे, जो थोड़ी चलता है। पहला क्या है, सर्वगुण। हाँ ठीक है, अच्छा। मैं बीच बीच में पानी पीता रहूंगा, ध्यान नहीं देना। आप देखिए, सर्वगुण संपन्न, तो आपके लक्षण क्या हुए। अब हमने यहां बैठे, बाहर निकलते, भोजन करते, कमरे में जाते, भट्टी पूरी करके अपने सेंटर में जाते, अपने घर में जाते, अपने जो भी है, आपने हर वक्त देखना है कि हम क्या हैं। एक हिस्सा ही ले लेते हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं, कापी में नहीं, जीवन में हम सर्वगुण संपन्न हैं। अर्थात हमारे में वो गुण हैं, खाली ड्रेस बदलनी है। संगम योगी ब्राह्मण से बाबा आपको नया शरीर दे देगा लक्ष्मी नारायण, लेकिन उससे पहले चेक तो करेगा कि लक्ष्मी नारायण का चोला दे इनको या राम सीता का दें, फिर उसमें महाराजा महारानी का दें, प्रजा का दें, रॉयल फैमिली का दें, आगे नहीं मैं बोलता, है ना, अच्छा नहीं लगता। अब आप सोचो कि वो हमको वहां जाके धारण करना है प्रैक्टिस, या यहाँ आत्मा ने, शरीर की बात नहीं है, वो तो शिव की बरात में आपको पता है हमारे जैसे थे व्हील चेयर पे चलने वाले, लेकिन आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा सर्वगुण संपन्न स्थिति में चलती है, सोती भी है, उसको सपने भी सर्वगुण संपन्न के आते हैं, उसके संकल्पों में भी सर्वगुण है। बस ये है, ये आपका लक्ष्य समझ लो, लक्षण समझ लो। अब पुरुषार्थ की बात नहीं है, आपको बाबा ने बहुत पुरुषार्थ कराया, कितनी मुरलियां सुनाई हैं, कितनी अव्यक्त वाणियां सुनाई हैं, कितनी भट्टियां आपने की हैं, अभी भी पता नहीं आप क्या सोच के आए हो, आगे भी भट्टियां करनी है या ये लास्ट है, आपकी मर्जी है, हैं? अच्छा, अब गुण का मतलब क्या होता है, मैं आपसे गुणों की लिस्ट नहीं मांग रहा। गुण का मतलब ये होता है कि अवगुण नहीं है, ठीक है। आपको दूध कोई दे तो आप कौन सा दूध चाहेंगे, प्योर चाहेंगे, मिक्स चाहेंगे या नकली चाहेंगे, प्योर चाहेंगे ना। सतयुग में आत्मा प्योर होती है, द्वापर में मिक्स होती है, और कलयुग में नकली, या हम चीज नकली भी मिक्स क्या करना, नकली करो ना। आजकल तो फूल भी नकली है, जो मेरे आगे फूल लगे हुए हैं, ये किसको खुश कर रहे हैं, ना इनमें खुशबू है, ना इनमें ताजगी है, कुछ भी नहीं है। और आजकल लोग नकली फूलों का गुलदस्ता भी देने लग गए हैं, लेने वाला भी खुश है कि घर जाके लगा दूंगा, कहीं ठोक दूंगा। अच्छा, कब्र पर भी मुसलमान लोग प्लास्टिक के फूल लगाने लग गए हैं, ताकि दोबारा आने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस नकली दुनिया के अंदर बाबा ने हमको पीछे ले गए, पहले मिक्स बताया, फिर कहा अपना मिक्सचर निकालो, प्योर हो जाओ। तो गुण, सर्वगुण को छोड़ दो, एक गुण ही ले लो, कोई भी गुण धारण या संपन्न हम तब हो सकते हैं जब उसके अंदर क्या ना हो, क्या ना हो, अवगुण का अंश मात्र ना हो, ठीक है। अब आप चेक करिए, मान लो स्नेह है, प्रेम है, देखो मेरा भाषण सुनकर दो चार तो अभी चल पड़े, हो सकता है अंत तक सारे चले जाएं। अच्छा मुझे मालूम नहीं है भट्टी है ये क्या है। अच्छा अब आप देखिए कि स्नेह है, अब आपने ये सोचना है सिर्फ कि मेरा सबसे स्नेह है, सबसे जो मेरा निंदा करता है, जो मेरे को गाली देता है, जो मेरे जीवन दुखी कर रहा है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे ब्राह्मण बन के उड़ता, उससे भी स्नेह है या नहीं है? क्योंकि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि 100 में से 99 से तो मेरा स्नेह है पक्का, केवल एक है बस, जिससे क्या डैश 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 है ना। अच्छा अब आप सोचो सारे अमरूद में कितने कीड़ों की जरूरत है, हा? एक। सारे तालाब को कितनी मछलियां गंदा करती हैं, एक। इसलिए चेक ये करना है कि अगर मैं स्नेह मूरत हूं, बाबा स्नेह का सागर है, मैं स्नेह स्वरूप हूं, तो क्या सचमुच 100% स्नेह स्वरूप हूं या कहीं कहीं हूं, कहीं कहीं नहीं हूं, कहीं कहीं मैं ज्यादा हो जाता हूं, कहीं कहीं मैं कम हो जाता हूं, ज्यादा मुझे कहीं सुख फायदा होता है उसके साथ मैं ज्यादा स्नेह दिखा देता हूं, और जिसके साथ नॉर्मल है उसमें नॉर्मल, और दूसरे के साथ तो स्नेह खींच ही लेता हूं, है? वो ओम शांति भी कहे तो मैं कहता हूं मैंने सुना ही नहीं, जैसे निकल जाओ जाओ। अब बताओ बोलो। अच्छा कि देव गुण दा गुण गुण वाला गुण इकट्ठे करेगा या अवगुण इकट्ठे करेगा? आप गुण, आपको गुण मूर्त बनना है तो आप क्या इकट्ठा करोगे, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं देखा होगा जो सुबह घर से निकले और पड़ोसियों को कहे जितना तुम्हारा कूड़ा करकट है मेरी बाल्टी में डाल दो। वो कहेंगे क्या हुआ इसको, तो मैंने जाके अपना ड्राइंग रूम से जाना है, हाँ, कोई करेगा? अब हम बनते तो बनना तो चाहते हैं सर्व गुण संपन्न, आगे भी बहुत कुछ है। अच्छा अब एक गुण को ही ले लो कि हम एक गुण संपन्न है, कोई भी गुण चुन लो आप, और फिर उसमें देखो कि कहाँ पर मिक्सचर होता है। तो बाबा ने हमको हर मुरली में बताया है, रोज बताता है, क्या बताता है कि देवता बनना है, देवता हमने बनना है या दूसरे को बनाना है? जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, मैं इसलिए इसका सोचता हूं कि बाबा का बच्चा ब्राह्मण है, ये भी देवता बन जाए ना तब तो सारे देवता होंगे, तो मैंने उसको देवता बनाना है, उसकी कमियां देखना है, उसको सुनाना है, शिक्षा देनी है, उसे प्रेम रोकना है जैसे बच्चे का खाना बंद कर देते हैं, या मुझे बनना? अच्छा जिसको जो बनना होता वो उसका ध्यान रखता है कि नहीं, या दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर देता? इसलिए बाबा ने कहा है निशानी क्या है, अगर हम पर चिंतन करते हैं तो हम सोच चिंतन नहीं करते, और सोच चिंतन वाला गुंडा ग्रहक बनेगा, पर चिंतन वाला क्या होगा आप जानते हैं। अगर हम पर दर्शन करते हैं, सुबह सुबह जिसको देखा उसका दर्शन किया, और दर्शन करते ही उसके सारे गुण नहीं सारी कमियां अपने अंदर आ गई, ये ना, तो सुबह अमृत वेली नहीं आता, वैसे बड़ा बनता फिरता है। शिवानी है ना, वो भाषण करती है, भगवान का नाम तो लेती नहीं, ईश्वर का तो ज्ञान ही नहीं लेती। अंदर क्या है? अंदर ये है कि हम किसी की गुण तो धारण कर नहीं सकते, उसके गुण को थोड़ा बहुत धब्बा लगा के जैसे हमने अपने पूर्वजों का दबा लगा दिया, शिव जी भांग पीते थे तो हम भी भांग पीने का लाइसेंस ले लिया है। तो बाबा कहता है ये देखना कि गुण ग्रहण करने वाला केवल गुण ही लेगा, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। कूड़े के ढेर पर कई बच्चे आप देखेंगे बोतल डब्बा कोई चीज मिल जाए इकट्ठी करते हैं, वो भी कूड़े के ढेर को नहीं देखते, वो क्या देखते हैं कि कोई मेरे काम की चीज हो जो थोड़ी बिक जाएगी। उसको भी इतना अकल है, हम तो ज्ञानी, तीनों कालों के ज्ञानी, तीनों लोकों के ज्ञानी, हम क्या इकट्ठा करते। अगर हमने बाबा हमको गुण दे रहा है, हम उसको वो तो ले लिए, लेकिन गुणों के डब्बे में हमने इधर उधर का फालतू चीज डाल दी, अवगुण डाल दिए, व्यर्थ डाल दिया, तो गुण रहे गए। आप चावल खाओ आपको दो कंकर आ जाए, आप कहेंगे चावल को छांटा भी नहीं, पत्थर मेरा दांत दुख गया। अच्छा, और यहां खुद क्या करते हैं, मन को क्या खिलाते हैं? बाबा कहता है हमने नई दुनिया में जाना है, प्राणी को तो छोड़ दिया, तो आपका मुंह किधर होना चाहिए और पीठ किधर होनी चाहिए, वो तो मुर्दे का करते हैं, हम तो मर जीवा हैं। आपका मुंह आगे को होना चाहिए, पीठ पीछे को होना चाहिए, बार बार मुड़ मुड़ के देखना चाहिए। अब आप सोचो सुबह से शाम तक चेक कर लो कि आप नई दुनिया के बारे में जहां आपने जाना है, बाबा भी मुरली में कहता है ब्रह्मा बाबा देखो लक्ष्मी नारायण का फोटो रखता था, देखता रहता था, मैं ये बनने हूं कल बनना है। अब अच्छा, हम क्या करते हैं? पीछे की बात जो बीत गया, अब हम शरीर छोड़ दें तो पीछे का कुछ याद रहेगा नहीं, हम जीते जी मरे हुए हैं। फुल स्टॉप के बाद पीछे जाना कब्रिस्तान में, अब क्या हम जाते हैं या नहीं जाते? इस जन्म में भी आगे जाना है या पीछे? समय जो है आगे जाता है या पीछे? तो बाबा तो कह रहे समय की स्पीड इतनी तेज है कि आप अपनी स्पीड को उसके बराबर लाओ और हम थोड़ी देर पीछे चले जाएं, फिर आगे बढ़े, दिन में 10 बार पीछे जाएं, 10 बार इधर उधर देखें, तो हमारी गति क्या? गति कहते हैं स्पीड को। तो अगर हमारी गति बहुत कम है और वो कह रहे उड़ो, फिर क्या होगा? बाबा कहते आप जो समझ सकते हो अंदर, इसलिए फिर जब हाथ उठाते हैं राम सीता किसने बनना है तो क्या कहते हैं? कोई नहीं उठाता। अच्छा, राम सीता भी नहीं बनना चाहते? वाह, अच्छा, जो भी त्रेता के महाराजा महाराज, लक्ष्मी नारायण किसने बनना, फिर क्या करते हैं? हाँ, अब लक्ष्मी नारायण किसने बनना है तो पहले सोचते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर हाथ उठा रहा है तो मैं भी थोड़ा सा उठा दूं। अच्छा, अब देखो दिल तो नहीं बोल रहा, उठा दिया तो बहन जी कहती है कि तुम्हारा फोटो लेना है, लिस्ट बनानी है, कौन जरा ऊंचा उठाना है, तो ऊंचा उठा के फिर नीचे कर लेते हैं कि फोटो में आ जाए बाकी ठीक है। अब बहन जी कहती नहीं नहीं थोड़ा ऊंचा रखो ताकि अच्छी तरह हम गिन लें, तो फिर ऊंचा उठा के ऐसे ऐसे करते हैं। अब मतलब क्या कि दिल के साथ हाथ नहीं है। बाबा पिछली मुरली में भी कहा है, अब मैं भी कहता है कि हाथ उठाना तो बड़ा आसान है, हाथ उठाकर तो बाबा को खुश कर देते हो, लेकिन बाबा कहते हैं दिल से हाथ उठाया, जैसे शिव का झंडा लहराना तो बड़ा आसान है, दिल पर शिव का झंडा लहराया। इसलिए हमें अब ये देखना है कि आपके पास बहुत कुछ है, لیکن اس میں سے جو آپ نے لے لیا وہ آپ کا، باقی سب گیا۔ جیسے جیون کے اندر بھی آپ نے بہت کچھ ساری زندگی اکٹھا کرتے لگا دی، اب جتنا تو آپ نے یوز کر لیا وہ آپ کا، شریر چھوڑ دیا تو کس کا۔ اسی طرح سے بابا کہتے گن کا پوچھیں گے، بھاشن کروائیں گے تو جتنے گن بابا بتاتا اس سے بھی زیادہ بتا دیں گے۔ بابا کہتے بچے میرے سے لائق تیز ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ گن ہم نے اپنے جیون میں لائے، اور نہیں لائے تو کیوں نہیں لائے، کارن کچھ ہو۔ تب بابا نے کہا وہ ایک کوشچن ہے، کیوں، کیوں، کیا، کب، کہاں، کیسے، کوشچن مارک۔ اب بابا کہتے ہیں کہ کیوں جو کہتے ہو یہ کیوں ہے، ایسا کیوں کیا، اس کو انچارج کیوں بنایا، اس کو یہ کیوں کیا، اچھا اس کو بھوجن بنانے کس نے رکھا ہے۔ تو بابا کہتے ہیں ڈرامہ کو جانتے ہوئے کیا کوئی کوشچن کر سکتا ہے، ڈرامہ ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی راون کو راون کو بنا دیا، راون نہ بناتے تو ہم ٹھیک ہی رہتے، اب راون نہ بناؤ گے تو رام لیلا چلے گی، اس لیے وہ بھی آوشک ہے۔ تو بابا کہتے ہیں ایک تو کیوں، پھر دوسرا چاہیے اپنی عقل مندی سے، کیونکہ ہم ہر ایک آتما اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا، اور گیان میں آنے کے بعد تو اور ہی عقل مند سمجھتا۔ آج کل ٹی وی چینل میں دیکھو ہر ایک نے اپنا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو بنایا ہوا بھاشن کرنے کا، 10 طرح کی مرلیاں چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں۔ اب بابا کہتا ہے بھگوان کی مرلی تو بھول گئے، فلانے کی مرلی سنو، اس کا بہت اچھا بولتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو چاہیے ہے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، میری بات کو ماننا چاہیے، ایسا کیوں، تو بابا کہتے چاہیے بھی ڈرامہ کے انوسار ہوتا ہے، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، ڈرامہ جو رائٹ ہوگا وہ کرے گا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ اس لیے گیان تو یہ کہتا ہے، نتھنگ نیو بھی ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ ہوا نئی بات نہیں۔ تو پھر اگر ہم کیوں کرتے ہیں، چاہیے کرتے ہیں، چرپر کرتے ہیں، جھرموئی کرتے ہیں، بیٹھیں گے بابا کہتے تمہارے پاؤں تم کو کہاں لے جائیں گے، تو جا کے بیٹھ جائیں گے ایسی آتماؤں میں جو آپ کو کتھائیں سنائیں گے، مہا بھارت کی کتھا، بھاگوت، گیان نہیں سنائیں گے، شروع گیان سے کریں گے، اس کے بعد دیکھو۔ تو بابا کہتے ہیں میں کب، تم سنگم کا اتنا امولک ٹائم ہے، تم ادھر ادھر کی فالتو باتیں سنو گے جس کو ویرتھ کہا جاتا ہے، پھر اس کو اور اس کا پرساد بھی بانٹتے ہیں، دوسرے کو جا کے سنائیں گے، تم کو پتا ہے، پتا ہے تم کو، اچھا لو اب ہم تو ہو گئے برہمن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، بی بی سی ہیں۔ تو اس لیے بابا کہتے یہ سارے لکشن ہیں کہ ہم نے گنوں کو کتنا دھارن کیا۔ جو گن دھارن کرنے والا ہے وہ نہ تو ویرتھ کو دھارن کرے گا نہ اوگن کو دھارن کرے گا۔ تو کیا کرنا، پرشارتھ، جس نام، جس کو ہم پرشارتھ کہتے ہیں نا، وہ الگ چیز ہے۔ ہم کو پرشارتھ کرایا گیا کیا، کہ اپنے کو دے نہیں ماننا، آتما ماننا، یہ پرشارتھ ہے۔ دے کے لوکک سمبندوں میں نہیں جانا، الوکک رہنا۔ دے کی وستوؤں میں من کو نہیں لگانا، اسے نیارے رہنا۔ دے کے ویبوں سے نیارے رہنا، پرانے سنسکاروں سے الگ، یہ سب ہم کو سکھایا، یہ سادھارن پرشارت ہے۔ آگے چلو، جب ہم بابا کے بن گئے، اس کے بعد بابا نے ہم کو بہت کچھ دیا۔ مان لو ہم دھن سیشا یوگی بنے، تو بابا نے کہا کہ میرا بچے کا ایک کا پدم گنا اس کو مل رہا ہے۔ گیان تھا، بابا نے کسی کو ٹیچر بنا دیا، کسی کو اسٹوڈنٹ، ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے پاس وہ گیان ہے جو دنیا میں نہیں۔ تو جو بھگوان نے ہم کو دیا दिव्य बुद्धि दी, हमको दुनिया के कई चीजों से मुक्त किया, दुखों से, उस सारे को भी क्या हम परमात्मा का प्रसाद समझ के यूज करते हैं या अपना समझ के? ये बहुत अच्छी कविता सुनाता है, ये बहुत अच्छा गड़बा करता है, ये बहुत अच्छा भाषण करता है। अरे बाबा के घर करते हैं ना गड़बा, तो दुनिया में भी करते, कितनी गड़बड़ होती है। बाबा के घर में कविता सुनाते हैं तो बात दूसरी है। तो बाबा की द्रोही विशेषताओं को अभिमान लाना खतरनाक है। अब आ जाओ मैं, बाबा कहता है मैं और बाबा इकट्ठे नहीं चलेंगे। जो ही आपने मैं कहा, आप रावण की लंका में पहुंच गए। रावण की लंका छोटी दिखाते हैं, छोटी लंका में भी उसको बड़ा अभिमान है कि मैं रावण हूं। तो मैंने छोटा करना अपने आप। बाबा ने आपको लौकिक से निकाला, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया, अपने सबसे बड़ी डिग्री दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इतने बड़े यज्ञ से क्या रिश्तेदार बनाया, फिर हम कहा कि मैं करते हैं। तो बाबा कहता है मैं से क्या होता है? मायूसी। मायूसी आप समझते ना, उर्दू का शब्द है, मायूस हो गया, मुरझा गया। मायूसी मगरूरी, मगरूरी मैंने अभिमान, मुरझाइश यानी डिप्रेशन और मतभेद, ये चार चीजें मैं से पैदा होती हैं। बाबा कहते हैं मतभेद नहीं करो, तुम एक 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 नाम ही बनो, तुम मुरझाइश में कभी नहीं आओ, कमल से भी हटके गुलाब बनो। बाबा कहते हैं कमल तो विष्णु के थे, प्रसाद थी के थे, गुलाब खुशबू देता है दूसरे को। अच्छा, इसके बाद मुरझाइश और बीके और मुरझाइश हो वो भी नहीं, पर ये सारी प्रसारक की बातें हैं। अब बाबा कमल कमल फूल समान बनने को कह रहा है या गुलाब का फूल बनने को कह रहा है? तो कमल फूल था प्रसारक और गुलाब का फूल है प्रालब। अच्छा, शंख बजाने को कह रहा है कि वाचा से सेवा करो या मनसा सेवा करने को कह रहा है, अपनी वृत्ति से सेवा करो? वो शंख बजाना है प्रसारक, कितने लोगों को शंख बजा लोगे? अब बजाने से थोड़ा बहुत सुनते हैं, फिर और बातें सुनते हैं, खत्म हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ शब्द निकाल के, तीरथ पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ शब्द निकाल के क्या करना है हमने? प्रालब्ध स्वरूप बनना है। प्रालब्ध भी हटा दो, स्वरूप बनना है। हर चीज का जितना हम स्वरूप बन गए, बाबा कहते हैं आपका स्वरूप आप ही सेवा करे। अब कहते हैं जी हमारा लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, बाबा को प्रत्यक्ष करना, बस है ना। बाबा तो व्यक्त है, बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया, आज दुनिया में बीके का कितना इज्जत है, कितना नाम है, कितने न्यारे लगते हैं, लोग देखते हैं कि वाकई भगवान ने एक नई रचना रच दी। अच्छा, अब हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो कैसे करेंगे? साधु बुलाएंगे, भाषण करेंगे, गीता पढ़ के सुनाएंगे, कहां से प्रत्यक्ष हो जाए? तो बाबा ने कहा आपसे मैं प्रत्यक्ष हूं, अपने बच्चों से। तो बच्चों में वो क्या देखेंगे? बच्चों में क्या देखेंगे? गुण देखेंगे कि भाई जिस चीज की उनको कमी है, उनको शांति नहीं है, उनको संतोष नहीं है, उनके अंदर इच्छाएं हैं, जो वो बड़े परेशान हैं। अब बाबा कहता तुम उनको मनसा से सेवा करो, इच्छा मुक्त करो, अशांति मुक्त करो, अच्छा असंतुष्टता खत्म करो, उनकी उनका तनाव खत्म करो। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसको बुलाएंगे, तनाव मुक्ति अभियान चलाएंगे, क्या करेंगे? तब बाबा कहता है जो तुम उनको देना चाहते खुद बन जाओ। अगर आप इच्छा मुक्त बनते हो तो आपके इच्छा मुक्त का वाइब्रेशन उसको जाएगा, वो उसकी इच्छाएं घटेंगी। अगर आप मोहजीत बनते हो तो उनके अंदर भी न्यारेपन का संस्कार आएगा। अब कल के मुरली में ही था कि मोहताज भारत जो है कंगाल, मोहताज, भगत, भिखारी बन गया। कभी भारत सिरताज था। अब मोहताज का क्या मतलब है? जिसने मोह का ताज पहना हुआ, आप चेक कर लेना भाई, है? दिखता नहीं है वो ताज। जिसने मोह का ताज पहना हुआ वो मोहताज है। कभी भी उसकी बरकत नहीं आएगी, कभी उसके अंदर इच्छा मात्र में विद्या नहीं आएगा, पालिया आएगा ही नहीं, संतुष्टता ही नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने बताया हुआ। इसी तरह से लोभ है। अब जिसके अंदर लोभ है वो संतुष्ट रह सकता नहीं, तो बाबा ने कहा हुआ कि अभिमान को जीतना है तो स्वमान में रहो। स्वमान वाला क्या करता है? दूसरे को भी स्वमान देता है तो दूसरा उसको स्वमान देता है। अभिमान वाला क्या करता है कि उसने दूसरे को स्वमान नहीं देना तो उसको भी मिलता, तो फिर उसकी ऑपोजिशन होती है, सारे को उसके ईर्ष्या करता है। इसलिए बाबा के जो नुस्खे हैं बड़े सिंपल है। हमको क्या करना है? जो लास्ट गीता के शब्द हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, एक परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहोगे ऑटोमेटिकली आपके वो गुण जो है परमात्मा के, जिसका सागर अंदर आ जाएंगे, वो आपके चेहरे पर आएंगे। चेहरे से सब कुछ दिखता है, नकली चेहरा भी पता लग जाता है। बाबा ने कहा ना, बाबा से प्यार है तो सही, 100% प्यार है, सदा का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार है, कभी कभी का प्यार है, जरूरत का प्यार है, मतलब का प्यार है, बहुत तरह के होते हैं। कहता अपनी अपनी मूर्तियां देख लो जाके, आपकी मूर्तियों में किसी के भीड़ लगी रहती है, दर्शन करने का मौका भी नहीं मिलता, किसी की जंगल में खड़ी है, कभी कभी कोई जाके धोखे करे आता है। तो इसलिए ये भी है कि सदा और स्वतः मेहनत करके आपको मान लो कि स्वर्ग का अपने एक्सरसाइज कराए, सतयुग में पहुंच जाओ। आप मेहनत से पहुंचते हैं या स्वतः ही पहुंच जाते हैं, वहां टिके रहते हैं या थोड़ी देर में कहीं और पहुंच जाते हैं, नींद में पहुंच जाते हैं सतयुग के बजाय, तो नींद भी बड़ी मस्ती लाती है, कहेंगे वाह बहुत अच्छा योग लगा। दूसरा कहता है मेरे कंधे पे सिर रखा हुआ है, अब बताओ। तो इसलिए भगवान कहता है कि अब हमको स्वरूप बनना है और ये देखना है कि वो स्वरूप में बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना, कि मैं सबके साथ मेरा प्यार है, मेरी सास के साथ नहीं है, मेरे पड़ोसी के साथ नहीं है, मेरे कमरे में जिसको रखा हुआ है उसके तो मुझे घबराहट होती है ना। आप निमंत्रण दो, ये सेंटरों वाले आके भोजन करो, दो तीन आएंगे ही नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं बिजी हूँ, कारण क्या है? तो उसने दूसरे के साथ बैठ के उसको अच्छा नहीं लगेगा भोजन करने, अंदर कुछ है, है? तो भाई इससे तो मैं बात नहीं करता, मुझे बड़ा डर लगता है, ये क्या है? तो आज की मुरली भी क्या थी? आज की मुरली इन्हीं बातों पर थी ना। तो इसलिए मुरलियां तो हम रोज सुनते हैं, करना क्या है? स्वरूप बनना, ये हरे के पास है। अब जितना स्वरूप बनेगा उतना ही स्वरूप दिखाएगा और उस स्वरूप से सेवा होगी। अगर स्वरूप में कुछ गड़बड़ होगी तो डिससर्विस होगी। तो आज बाबा ने वार्निंग दे दी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सेवा में विघ्न आए। तो हम समझते हम किसी को डिस्टर्ब थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फंक्शन में नहीं गए बस, लेकिन ना जाना भी विघ्न है। क्यों नहीं गए भाई? दूसरे सब कहेंगे हम आपको बता देते हैं, वो नहीं आएगा, उसको पहले ही पता है, क्योंकि उसका मन मटाव है। तब बाबा कहता है मन मटाव रखना, लून पानी बनना, किसी के साथ ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष करना, कंपटीशन करना, ये क्या है? सतयुग में ये चीजें नहीं होती। तो इसलिए क्या करना है? बाबा ने एक ही शब्द बताया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं। बहुत साल पहले आपको पता है कि ध्यान में जाकर के बहने जाती थी, उनमें राजकुमारी आ जाती थी, फिर वो राजकुमारी की तरह ही एक्ट करती थी, उसको यहाँ का सब कुछ अलौकिक दिखता था। तो हमारे केंद्र पर ये जो मोहिनी बहन है ना, जो दादी के साथ थी, वो रहती थी, वो बहुत अच्छी संदेशी है, तो उसमें राजकुमारी आ गई। तो मैंने टेस्ट करने के लिए मैंने जेब से पेन निकाला, उसको पेन तो दिखता ही नहीं, उसको तो ज्वेलरी दिखती है, हीरे ज्वारा से जब। तो मैंने कहा कि दूसरी राजधानी से आपके लिए ये भेंट आई है। उसने देखा, बहुत जोर से हंसा, हा हा हा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने घड़ी उतारी और मैंने कहा, एक राजधानी से आपके लिए ये भेंट आई है। उसी तरह से बहुत खुश, उसको तो दिखता ही नहीं यहाँ का, वहां का दिखता है। फिर मैंने पूछा, इन दोनों में कौन सा अच्छा है, जान के पूछा। उसने कहा, दोनों अच्छे। मैंने चार बार पूछा, फिर भी बताओ इन दोनों में कौन। चारों बार उसने कहा, दोनों अच्छे। इसका मतलब क्या निकला कि सतयुग के अंदर कंपैरिजन नहीं है। प्रजा भी और राजा भी, भले वो राजा प्रजा है, लेकिन उनका इतना स्नेह है जैसे परिवार के, कोई फर्क नहीं। बाबा रोज कहता है, महाराजा महारानी और रॉयल फैमिली वाले एक जैसे हैं ट्रीटमेंट में। वहां कोई लॉ नहीं लिखता, जैसे यहाँ गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कोई ऑर्डर नहीं करता, कोई वजीर नहीं होता, ऑटोमेटिक स्नेह। और स्नेह के अलावा कुछ होता ही नहीं। जब बाबा कहता है कि मैं अपने लास्ट बच्चे से भी उतना ही स्नेह करता हूं, तो देवी देवता भी करते होंगे। तो वो हमें यहां करना है कि नहीं करना? अच्छा, सम्मान देखिए, क्लास है, क्लास में मुरली कौन चलाता? बाबा ही चलाता। हम कह देते हैं आज उसकी क्लास है, जैसे कि उसकी क्लास अच्छी नहीं होती, आज उसकी क्लास है, उसमें जरूर चलेंगे। अब बताओ, सुबह रेडियो पर या कितने अच्छे तरह की मुरलियां चलती हैं, और किसी छोटी सी कन्या, उसकी आवाज बड़ी मीठी है, तो ये मुरली अच्छी है। अब वो कन्या में कितनी की धारणा है, कितनी की डेप्थ है, कितनी, वो सीधा 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 पढ़ देगी, आवाज मीठी लगेगी, लेकिन सिर्फ आवाज तो हमें सतयुग में नहीं ले जाएगी। कलयुग के लोग भी जब मतलब होता है तो कितना मीठा बोलते हैं, इसका मतलब वो देवता थोड़ी हो गए। इसलिए हमको देखना है हमारे अंदर समानता हो, समरसता हो। तो बाबा ने कहा, अच्छा और छोड़ो, मधुरता हो। आप यही चेक कर लो कि कोई भी आए, मुझे देवता बनना, तो देवता मधुर होते हैं, तो हर वक्त मेरी मधुरता एक जैसी रहती है या कभी कम हो जाती है, कभी उसके अंदर कुछ रोब आ जाता है, कुछ और मिक्सचर हो जाता है, आपको पता लग सकता है। अपने अंदर ही चेक कर लो। आप कभी बिल्कुल रेस्ट करने जा रहे हैं, कोई मिलने आ गया, तो आप कहेंगे कौन आ गया, बाहर जाकर कहें आओ जी आओ, अंदर से सोचे जल्दी जल्दी इसको भुगताओ, मैंने तो सोना है, अब बताओ। तो एक रस तो नहीं रहे ना, तुम्हारी मूर्तियां तो एक रस है, तो अंदर का भाव दूसरे को भी फट पता लग जाता है कि भाई जल्दी जल्दी कर रहा है मेरे साथ। इसलिए देवता कभी जल्दी नहीं चलते, कभी भागते नहीं। हमारी मातेश्वरी जी सी, एक बारी मातेश्वरी जी दिल्ली में आई, बहुत साल की बात है, थोड़े से स्टूडेंट थे, तो वापस मधुबन आ रही थी, तो रेलवे स्टेशन पर स्टूडेंट लाइन लगा के खड़े थे, और मृत्युश्वरी जी उनको दृष्टि दे करके विदाई ले रही थी, ट्रेन वहां खड़ी थी, तो ट्रेन के विसल बज गई। हमने कहा मम्मा ट्रेन, मम्मा ने जैसे सुना ही नहीं, फिर उसी स्पीड से उसको मिल रही है दृष्टि दे रही। गार्ड ने झंडी दिखा दी, विसल बज गई। हमने फिर कहा मम्मा ट्रेन, तो मम्मा ने फिर भी कुछ नहीं, वैसे की वैसे है। अच्छा अब तो लास्ट ही होना था झंडी, तो हम सोचे दिल में, हमारा दिल धड़क रहा है कि मम्मा ऐसे कर रही है, दूर ट्रेन है, मम्मा चलती भी सुलह डब्बा पकड़ेगी कि नहीं। अच्छा मम्मा फिर उसी तरह, तो जब मम्मा ने सबको टोली दे दी, तब भी गार्ड ऐसे ऐसे हरी झंडी लहरा रहा, कभी भी ट्रेन चल सकती है, मम्मा फिर भी उसी स्पीड पे जाके डब्बे में बैठी। अब इसको कहते हैं काल जीत, अपने ऊपर निश्चय, समय के ऊपर निश्चय। गाड़ी चल नहीं सकती जब तक मम्मा बैठे ना, और हम क्या सोचते हैं गाड़ी ना निकल जाए, तो बताओ तो मतलब क्या हुआ, है छोटी सी बात। इसी प्रकार से भारत के फर्स्ट गवर्नर, बहुत साल की बात है, बी गोपाल रेड्डी यूपी के गवर्नर थे, तो फर्स्ट गवर्नर भारत के पांडव भवन में आए, मेरी ड्यूटी थी उसका ध्यान रखना। अच्छा तो मैंने सोचा ये मद्रासी है, मद्रासी ज्ञान का गाना लगा दो। तो मैंने कहा जी आप गीत सुनेंगे, जब तक मैंने कहा उसके लिए कुछ तैयारी करेंगे खिलाने पिलाने, कहता हाँ। तो मैंने मद्रासी गाना लगा दिया और भाग के जाके कहा ब्रांडी जूस बनाओ। अच्छा फिर मैं भाग के आया, भागे भागे जैसे गवर्नर नहीं पता नहीं कौन आ गया, तो मैं कहता ये मद्रासी गाना हटा दो, हिंदी का लगाओ। तब मुझे पता लगा कि भाई मद्रासी में तीन भाषाएं होती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो वो बेचारा तेलुगु था, मैंने मलयालम लगा दिया, तो उनको अपनी भाषाओं में भी भेद होता है। फिर मैं भागा भागा गया, तो उन दिनों जूस कैसे निकलता था, ये साड़ी के उसके अंदर मौसम्मी डालते थे, ऐसे ऐसे दबाते थे, वो तो दिन दूसरे थे, तो थोड़ा सा निकला था। तो मैंने कहा बहन जी, उधर से जानकी दादी निकली, दादी की दादी ने देखा मुझे, तो जानकी दादी ने कुछ नहीं कहा, बोली वो मुझे आज तक नहीं भूलता, ये जूस तो अपने टाइम पर ही निकलेगा, बेचारे निकाल रहे थे, तुम ये क्या कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक बात है, हम अपना धैर्य खो देते हैं। उसके बाद मैंने पक्का बांध लिया कि कभी भी इस चीज में नहीं जाना, लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ड्रामा मुझे अपनी रॉयल्टी रखनी है। बुद्धि में अगर मैं तेजी करूंगा तो कहीं कुछ गिरा दूंगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए ये चीजें हमको नोट करनी है। कि मान लो हम स्नान करने जा रहे हैं, कोई दूसरा चला गया, हमारा मूड कैसा होता। अगर हम कहें पता भी है वो जाना, हम कहें अच्छा आप जाइए, तो आपको इतनी शक्ति मिलेगी, इतना संतोष मिलेगा जो आप भाग के जाते तो नहीं मिलता। तो इन चीजों से हमें देखना है कि हर वक्त हमने देखना है मैंने देवता बनना, ये नहीं दूसरा गलती कर रहा है, मेरी टर्न थी वो क्यों चला गया ना, ये तो ट्रस्ट है हमारे, हमने देवता बनना है, हमने अपने समान में रहना है, ये है बात। और शुभ इसके लिए ही बाबा कहता है, मैंने फार्मूला दिया हुआ, शुभ क्या, शुभ चिंतन, शुभ संकल्प करो। अगर आप यही सोच लेना केवल और कुछ नहीं, मैंने शुभ संकल्प करना बस, अशुभ करना ही नहीं, इसके ऊपर आप ट्राई करेंगे तो भी आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारी करेक्शन आ जाएगी। शुभ भावना रखना है, अशुभ भावना रखना ही नहीं, तो आपके अंदर व्यर्थ भी निकल जाएगा, फालतू न्यूज सुनना, फालतू समाज, मैंने क्या करना, मेरे संकल्प में शुभ होना चाहिए, फालतू होना चाहिए, और फिर फालतू के अंदर और आगे बढ़ता है बहुत कुछ। जैसे आजकल है शुभ भावना नहीं है, मान लो किसी को कह दे कि तेरा रिश्तेदार हॉस्पिटल दाखिल हो गया, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, भगवान चलो बाबा इसका जल्दी ठीक कर, इसके कर्म चुक तू हो, जल्दी बेचारा घर आए। लेकिन संकल्प क्या चलता है कि उसको कुछ हो ना जाए। पहला तो ये आता है जैसे होने ही वाला है, और फिर अगर उसको कुछ हो गया तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी तो नहीं आ जाएगी। अब जिस व्यक्तियों के अंदर इतना निराशा है, इतना देश शिकस्ता, शुभ भावना रखेंगे कैसे? तब बाबा कहता कि मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको मौका दे रहा हूँ। सतयुग में ये शुभ संकल्प नहीं रख पाएंगे, जितना लेट शुरू करेंगे उतना त्रेता में आएंगे। सीधा सीधा हिसाब है। तो किसी भी तरीके से दैवी गुण, मीठा बोल, बाबा रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, शुभ भावना, चेहरे पर संतुष्टता की मुस्कान, नकली तो हम कर लेते हैं, टोटल संतुष्ट है। हमें किस चीज की संतुष्टता है? भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है? हमें तो इतना ही अच्छा है कि हम भगवान के बच्चे बन गए, इससे बड़ी बात हो सकती कुछ? अगर आपके आसपास कोई सो रहा हो तो जरा खिला दो। हाँ अच्छा, अब देखिए मुरली में आया है, भक्ति में परमात्मा से धन मांगते हैं, ठीक है, लक्ष्मी से, कोई विद्या मांगता है, कोई शक्ति मांगता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें क्या देता हूं, मैं तुम्हें, जैसे आजकल होता है ना, यदि किसी कन्या की शादी करते हो तो उसको एक फ्लैट नहीं देते, ऐसा वैसा नहीं कि तेरा बना बनाया घर है, यहाँ सब सामान रखा है, तो आराम से रहना। बाबा हमको पूरी कॉलोनी बना के देता है स्वर्ग, कि बच्चा ऐसे नहीं तुमको ये दे दिया, धन दे दिया, फलाना दे दिया, धन दे दिया तो हेल्थ खराब है, हेल्थ दे दिया तो धन उड़ गया ना, पूरी कॉलोनी क्या स्वर्ग उसका नाम है। ऐसी बढ़िया कॉलोनी तो दुनिया में है नहीं, और वो आपके 21 पीढ़ी आपके पास चलेगी। क्या वहाँ मौसम होगा, एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं, नकली फूलों की जरूरत नहीं, खुशबू, आप जानते हैं स्वर्ग क्या होता, थोड़ी सी आबादी। आज की दुनिया की आबादी को भी अगर 9 लाख कर दो तो सारे लोग कितने धनवान हो जाएंगे। वहां तो अथा गिनती की बात नहीं, हीरे आपके ऐसे जड़े हुए हैं घरों में, महलों में, इतनी बड़ी कॉलोनी बना के दहेज में देता, और सब कुछ, लंबी आयु, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, लेट नहीं, फ्लेट नहीं, तो ऐसी बढ़िया हमारी प्रारब्ध है। और उसके लिए दाखिल कौन होगा? मान लो आपको यहाँ कुर्सी पर भी आके बैठते हैं तो आप देखते हैं मिट्टी मुट्टी तो नहीं है, या कोई मिट्टी वाला आता है तो सोचता है कि इस कुर्सी पर मैं ना बैठूं, है ना। तो अब आप सोचिए कि स्वर्ग, तो स्वर्ग में साफ आत्मा चाहिए, बिल्कुल क्लीन चाहिए, फर्स्ट क्लास, और उसमें भी सोने के भी जेवर होते हैं, चांदी के भी होते हैं, तो सोने के जेवर की वैल्यू अलग है, उसमें भी क्वालिटियां होती हैं। एक कुर्सी भी आपको 10,000 की भी मिल जाएगी, 500 की भी मिल जाएगी। तो भगवान कहता है कि जितनी आप यहाँ अपनी सफाई कर लोगे, अपने पॉलिश कर लोगे, दैवी गुण धारण, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मौका और तो कोई करवा ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम उसका ध्यान रखें कि हमारी इतनी बड़ी प्राप्ति, इतने जन्मों की प्राप्ति, इतनी बाबा हमें करवा रहा है, जरा सा ध्यान ही तो रखना। तो केवल 3 बातों का ध्यान रख ले कि भाई हमें संतुष्ट रहना है, ऑटोमेटिकली संतुष्ट आपके चेहरे पर आएगी, हमने मीठा बोलना है, शुभ संकल्प करना है, बस छुट्टी। तो ये आप पुरुषार्थ छोड़िए, अपनी प्रारब्ध को लाके जीवन में उसका अनुभव करिए। ओम शांति।